नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट टू। जी हाँ, आपका ये लेसन नंबर 6 है और इस लेसन पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट टू।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आपका बहुत स्वागत है। ये सीनियर सेकेंडरी में लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्रोग्राम है। ये हम लेसन 6 तक पहुंच चुके हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हमने पिछली बार जो पढ़ा, जिसके बारे में हमने बात की, वो थी हम प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, टर्शरी सोर्सेज के बारे में बताया। अभी पूरी तरह से हमने उनके बारे में बात नहीं की, हमने सिर्फ इतना जाना प्राइमरी सोर्सेज में पीरियोडिकल्स में स्कॉलरली पीरियोडिकल्स होते हैं, ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स होते हैं, पॉपुलर पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ई जर्नल्स होते हैं, जिसमें कि आपको मालूम है कि जो स्कॉलरली पीरियोडिकल्स हैं वो सारे ज्यादातर पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड होते हैं, ट्रेड वाले ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, पॉपुलर जो हम नॉर्मल रूटीन में जो हम मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ई जर्नल्स ई मैगजीन्स भी होती हैं इसमें। तो ये हमारा सारा प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात की। जो हम आज बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट्स की। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हमारे पास दीप है एक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी है, जहां पर कि आप अपने सारे ई रिसोर्सेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पर आप दीप के थ्रू एनआईएस की वेबसाइट से जाएंगे, एनआईएस की वेबसाइट में देखेंगे, एक आइकन दीप बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, आपको एनआईएस के सारे रिसोर्सेज, उसके अलावा परचेज रिसोर्सेज भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसमें आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स और स्टोरी बुक्स, ये सब कुछ मिलता है। तो आज जो हम बात करेंगे, बढ़ाएंगे प्राइमरी सोर्सेज को ही आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम टेक्निकल रिपोर्ट्स की बात करेंगे। टेक्निकल रिपोर्ट्स, जैसे कि नाम ही बताता है, टेक्निकल है, तो ये किससे रिलेटेड है? ज्यादातर जो है कंपनीज निकालती हैं इन्हें, या रिसर्च एरियाज से रिलेटेड रहते हैं, जहां जहां जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादातर रिसर्च होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है अपने रिसर्च के बारे में, उसकी रिपोर्ट जो निकलती है ज्यादातर इंडस्ट्रीज या कोई एजेंसी रिलेटेड होती है इनसे। जो कि कल देखा जाए तो अभी अगर देखेंगे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे जर्नल, जिनके लिए अलग से एक उनकी यूनिट होती है, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो पेपर्स लिखते हैं, और वो सब पेड भी है कई जगहों पे। तो इस तरह की रिपोर्ट जो बनती है टेक्निकल रिपोर्ट होती है, और इसका यूज भी आगे होता है, पर ये आता है आपके प्राइमरी सोर्सेज में ही। इसके अलावा फिर हो जाएंगे हम कॉन्फ्रेंस पेपर्स। कॉन्फ्रेंस पेपर्स आप सभी को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन साल में एक बार या दो बार या कई बार जो भी किसी टॉपिक से रिलेटेड, जिस पे वो माइंड को देखना, टीज करना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वो लोग हम क्या करते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं, सभी लोगों को उसमें इनवाइट करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पर सब लोग अपने एक्सपर्ट्स अपने पेपर्स लेके आते हैं, वो पीपीटी के थ्रू या वैसे पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। जब कॉन्फ्रेंस 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जब या 1 दिन बाद खत्म होती है, उसकी प्रोसीडिंग्स निकाली जाती है, उसमें क्या क्या हमने लाया, क्या क्या प्रेजेंट हुआ, कौन कौन से डिस्कशंस हुए हैं, और मिनट्स उसके सब सारे, ये सभी कुछ हम लोग प्राइमरी सोर्सेज में आता है। और ये सारे मिनट्स वगैरह जो भी आते हैं डिस्कशंस में, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये सब यूज होती हैं। तो इसकी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। आप किसी एक का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी एक नाम दे सकते हैं। फिर हम डिजर्टेशन और थीसिस की बात करेंगे। डिजर्टेशन एंड थीसिस तो आपको मालूम है, ज्यादातर हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें एक पार्ट ऑफ द सिलेबस में एक डिजर्टेशन मिल जाती, कोई भी एक टॉपिक मिलता है जिसपे हमें काम करना होता है, और उसकी हम उतनी बड़ी नहीं जितनी थीसिस होती है, उतने बड़े एरिया में नहीं काम करते हैं जितना हम पीएचडी में करते हैं। थीसिस में हम एरिया भी ज्यादा होता है, अगर अब हमने क्वेश्चनेयर्स बनाए हैं तो वो बहुत कम क्वेश्चनेयर्स पे नहीं सॉल्व होगी प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस जो भी क्रिएट की जाती है। तो मास्टर्स और पीएचडी में, डॉक्टरेट में ये फर्क रहता है, यहां पर हम डिसर्टेशन करते हैं और वहां पर थीसिस दे देते हैं। तो थीसिस भी किसी एक टॉपिक पे होती है, डिसर्टेशन भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं और फिर उसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट बनती है, जो आप जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसके अगेंस्ट आप काम करते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम व्हिच वाज टू बी सॉल्व्ड। इस तरह से हम लोग डिसर्टेशन और थीसिस पे काम करते हैं। फिर पेटेंट्स की बात करेंगे हम, तो पेटेंट्स किसको मिलता है, ये इशू कौन करता है? ये इशू हमेशा गवर्नमेंट ही करती है, उन कंपनीज को ये राइट देती है, या किसी एक सिंगल पर्सन को भी ये राइट मिलता है। किसके अगेंस्ट? आपके किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, या आपने कोई इन्वेंशन करी, या आपने कोई ऐसा प्रोसेस डिवाइस किया, या कोई डिजाइन किया है, कुछ अलग सी चीज डिजाइन की, तो इसका आपको पेटेंट मिलता है। कुछ साल तक आप इसके हकदार हो जाते हैं कि आप ही सिर्फ इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आपसे कोई परमिशन लेके बनाए इसे प्रोसेस करे, या कुछ भी आपकी नकल ले ले या उस पे काम करे, तो उसमें उसको आपकी परमिशन की जरूरत होती है, जिसमें कि आपकी कोई फी होगी या जो भी आपके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ये यूज होता है। तो पेटेंट्स भी क्या करती है, गवर्नमेंट दे देती है ज्यादातर R&D एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई नई एक्टिविटी हुई है, तो आपको आपके काम को किसी ने देख लिया और वो फटाफट अपना लेगा उस काम को, तो इसलिए आपको सेफ गार्ड करने के लिए पेटेंट इशू किया जाता है। तो गवर्नमेंट अपना जो पेटेंट पब्लिश करती है वो एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, वो गैजेटियर ऑफ इंडिया में होता है, पार्ट 3 सेक्शन 2 में आपके नाम के हिसाब से आपको पेटेंट से रिलेटेड छपाया जाता है। फिर हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। ऐसे जैसे नाम क्या कह रहा है हमें, स्टैंडर्ड का मतलब होगा ये कि एक ऐसा मानक बनाइए आप जो कि हर जगह आपको सेम स्पेसिफिकेशन हो, सेम गाइडलाइंस चले। अगर हमने ये सोचा कि करिकुलम हमने बनाना है, 10 सब्जेक्ट्स का बनाना है, तो हमने एक ऐसी SOP डेवलप कर ली, एक ऐसा स्टैंडर्ड डेवलप करा कि हर सब्जेक्ट को उसी के मापदंड से चलना है, वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई बिजली की फिटिंग यूज करनी है, सपोज वो यहां करेंगे, या आप कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, या किसी गांव में जाते हैं, वो फिटिंग आपको सब सेम ही मिलेगी, ताकि आपको वो जो एक तरह का स्टैंडर्डाइज जो चीज है वो उस स्टैंडर्ड बनेगा और हर जगह उसी तरह से उसे बनाया जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता है, ताकि उस रूल से आप डिविएट मत हो जाएं, अलग मत हो जाएं। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बनाएंगे तो सभी जगहों पे उसका इस्तेमाल होगा। बेसिकली ये बहुत अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। जैसे मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसे कोई और यूज करेगा वो भी वही नॉर्म्स को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड्स दो तरह के हैं, फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। फंडामेंटल स्टैंडर्ड में हम क्या ले लेते हैं, फंडामेंटल मतलब बेसिक, उसमें लेंथ का, मास का, या टाइम से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, एनर्जी, फोर्स, कुछ ऐसे क्वांटेबल जो चीजें जो काउंट की जा सकती है, देखी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, उससे रिलेटेड होते हैं फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स। और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं वो है प्रोडक्ट से, प्रोसेस से, मटेरियल से और सर्विसेज से। ये सब इन दोनों में अंतर है। स्टैंडर्ड आपका हमेशा आपके सर्विसेज का जो है सेफ, रिलायबल और अच्छी क्वालिटी का बनाता है, इसीलिए स्टैंडर्ड को बनाने का फायदा होता है और ये ग्लोबली एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग ट्रेड और प्रोडक्ट बुलेटिन में। ट्रेड तो मतलब हो गया कारोबार से रिलेटेड है, कारोबार किसी भी चीज का हो सकता है, वो किताबों का हो, या किसी प्रोडक्ट का, ड्रग्स का हो, केमिकल्स का हो, या घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें उनसे रिलेटेड हो, कोई मशीनरी हो, कोई इक्विपमेंट हो, रिसर्च से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ये कोई भी चीज जो ट्रेड में है वो उससे रिलेटेड होता है। प्रोडक्ट बुलेटिन कौन निकालता है? ज्यादातर जो ये है ये इंडस्ट्री के लोग ही निकालते हैं इसे, चाहे वो अब हमें देखेंगे पब्लिशर हो कोई, मैन्युफैक्चरर हो कोई या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी भी तरह का मटेरियल जो भी बनाता है करता है उसी वही ट्रेड बुलेटिन को भी निकालता, प्रोडक्ट बुलेटिन को भी निकालता है। ट्रेड और प्रोडक्ट बुलेटिन जो है ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये भी जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल ये सब आते हैं उसी तरह से ट्रेड एंड ये भी, इसको भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक रिपोर्ट दी जाती है और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर होता है, क्योंकि आप अगर अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक बुलेटिन बनाएंगे, आप उसके बारे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा विवरण करेंगे, उसमें दिखाएंगे, समझाएंगे लोगों को कि मेरा ये प्रोडक्ट है, किस काम आएगा आपके और कैसे कैसे फायदेमंद रहेगा आपका, तो वो एक बुलेटिन उस तरह का निकलता है। ये होता है ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन। इसके साथ इसमें आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे कि पीरियोडिकल क्या होता है, कितने तरह के पीरियोडिकल्स होते हैं, आपको मालूम ही है कितने तरह के होते हैं, आप जैसे मैंने आपको कहा स्कॉलरली भी होते हैं या डे टू डे जो हम कमर्शियली यूज करते हैं वो पीरियोडिकल्स होते हैं। फिर इसी तरह स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जाएगा, किस तरह से वो प्रमोट करता है हमारे ट्रेड को, क्योंकि एक कांस्टेंट एक स्टैंडर्ड बन जाता है जिसकी वजह से वो कॉमनली हर जगह यूज हो जाता है। फिर हम न्यूज़पेपर के बारे में पूछेंगे तो न्यूज़पेपर के बारे में आपको मालूम है सभी को कि न्यूज़पेपर क्या होता है, डेली रूटीन में कैसे छपता है, कहाँ छपता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में छपता है, ये सब बारे हैं। सभी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो थी प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में, प्राइमरी सोर्सेज के बारे में, प्राइमरी सोर्सेज में प्राइमरी पीरियोडिकल्स। तो अब जो हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज की बात करेंगे। सेकेंडरी सोर्सेज इसको समझना बहुत जरूरी है इस लेसन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं और टर्शरी सोर्सेज कौन से हैं। सीधी सी बात जो है जो हम जैसे समझ के याद कर सकते हैं, प्राइमरी वही है जो अबंडेंस में जो बहुत तरह से छपते हैं और जिनके वॉल्यूम की कोई इंतहा नहीं, हर जगह न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल या हर रोज छपते हैं, या रिपोर्ट्स हो गए आपके, या पेटेंट्स हैं, डिसर्टेशंस हैं, थीसिस हैं, ये सब छपते रहते हैं। इनको खंगालने के लिए, इनमें से इन्फॉर्मेशन निकालना एक बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसलिए जो हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करेंगे, जो भी प्राइमरी सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन छप जाती है बहुत लार्ज नंबर्स पे होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, उन सब में से इन्फॉर्मेशन को निकालना, और इनमें लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है, इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी रिसर्चर को, उसमें से इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना, देखना, पढ़ना, इंटरेस्ट का टॉपिक निकालना बहुत मुश्किल है। तो लाइब्रेरीज क्या काम करती हैं, जहां पर लाइब्रेरीज का काम आ जाता है यहां कि वो एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है जिसे हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं। वो सेकेंडरी सोर्स जो है, जो हम किस तरह से करते हैं, उसे कैसे पब्लिश करते हैं, वो बिब्लियोग्राफीज के फॉर्म में होता है, बुक के फॉर्म में होता है, रिव्यूज के फॉर्म में होता है, ट्रीटीज होती है, स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट्स होते हैं, रेफरेंस सोर्सेज होते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपको सेकेंडरी सोर्सेज के अंडर आ जाता है। तो इसे जरूर याद रखना है, समझना है कि प्राइमरी में हमारे पास क्या आता है और सेकेंडरी में क्या आता है, और सेकेंडरी सोर्सेज क्यों किए जाते हैं, ताकि हम प्राइमरी सोर्सेज से जो है इन्फॉर्मेशन को हम पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम रेफरेंस सोर्सेज जो अलग से हम बात करेंगे, इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि बिब्लियोग्राफीज क्या होती हैं सेकेंडरी सोर्सेज में, पीरियोडिकल्स में। तो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स क्या है, जो रेगुलरली स्कैन किया जाता है लिटरेचर, प्राइमरी सोर्सेज में जो भी पब्लिश होता है उसमें से रिलेवेंट आइटम को अरेंज किया जाता है। देख लीजिए, या तो अल्फाबेटिकली हम इसे अरेंज करें या हम क्लासिफाइड मैनर में इसे अरेंज करें, और इसका हम एक बुलेटिन या कुछ भी निकालें कि वो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कुछ भी निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं जिसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों। जैसे आपने मुझे कोई टॉपिक दिया, बोला इस टॉपिक पे मुझे सोर्सेस बताइए क्या क्या अवेलेबल है लाइब्रेरी में। वो उस टॉपिक को लेकर के मैंने खुद सर्च किया, लाइब्रेरी ने खुद सर्च किया, तो जो भी मुझे टाइटल्स मिले उससे रिलेटेड मैंने ऑथर, टाइटल, क्लास नंबर ये सब अरेंज कर दिया, फिर उसे रीअरेंज किया, एक बार ही सिलेक्ट किया, फिर सारे सभी को रीअरेंज करके इसके साथ एक इंडेक्स भी बना दिया और एब्स्ट्रैक्ट भी लिख दिया, ताकि आपको अगर मेरे लाइब्रेरी में से 50 डॉक्यूमेंट्स मिले मुझे आपके टॉपिक के हिसाब से, तो आप उस टॉपिक को क्या करेंगे, उसका जब इंडेक्स में बनाऊंगी, अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगी, तो आप फटाफट देख पाएंगे उसमें से कौन सा टॉपिक आपको देखना है। और जब आपको वो टॉपिक मिलेगा उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो जिस्ट होगा उस पेपर का, वो जिस्ट को पढ़ेंगे, आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस जिस्ट को पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स छोटा सा, एकदम मीनिंगफुल, शॉर्ट बट क्रिस्प, जिसमें पूरे चैप्टर को समाया गया हो, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन समाई गई हो, वो पढ़ा आपने, इंडेक्सिंग से देख लिया आपको कौन सा पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट से आपने ये जान गए किसके अंदर क्या है, तो आपका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, आपको पचासों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए कि हमें इस चीज पे काम करना है, उस तरह से आपका जो है टाइम काफी हद तक सेव हो जाता है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स में क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो है क्या करता है, रिलेवेंट आइटम्स को वो फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या होती है, वही ऑथर, टाइटल, पेज नंबर, कितना लेंथ ब्रेथ, ये सब सारी डिटेल्स जो भी वो ले लेते हैं प्राइमरी सोर्सेज से, इसे फिर वो अरेंज करते हैं एक ब्रॉड सब्जेक्ट हेडिंग के अंडर या एक क्लास नंबर के अंडर। अगर हमें ये लगता है कि एक सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर हम इसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, नहीं तो क्लास नंबर के अंडर करेंगे, तो आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। ये इसी अरेंजमेंट को, जो हम सभी चीजों को ये अरेंजमेंट जो मिल जाता है, ये एक तरह के आइटम्स को सभी को इकट्ठा कर देता है, एक सब्जेक्ट एक जगह पे हो जाता है। चाहे आपके पास बहुत सारे इस तरह के बुक्स हो, बिखरी हुए हो, खाली बुक्स नहीं होंगे, जर्नल होंगे, मैगजीन्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, मगर जब मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स को आइडेंटिफाई किया, अलग कर लिया और एक सिमेट्री से इसे अरेंज कर दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, तो उस तरह से आपको वहां पर पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। अल्फाबेटिकली जब ये अरेंज हो गया तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल हो गया। इसको मैं अलग से छापती हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट की शेप में छपता है, इस तरह से इसको आप देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप जाकर के ढूंढेंगे। वॉल्यूम नंबर भी बनेगा इसका, हर लाइब्रेरी का अपना होगा, ये ज्यादातर बड़ी लाइब्रेरीज में होता है और ज्यादातर रिसर्च से रिलेटेड लाइब्रेरीज में ज्यादा इस तरह का काम होता है, वो भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में हो सकता है। इसकी एक हमने एग्जांपल जो दी है, हमने रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, आप अगर इसको गूगल पे डालेंगे और देखेंगे आप, हाँ रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर है, वहां पर उन्होंने एक तरह की इंडेक्सिंग बनाई हुई है एक तरह के पीरियोडिकल से रिलेटेड, और ये H.W. विल्सन की कंपनी थे जो इसको छापती है। इसे ऑलमोस्ट 400 स्कॉलरली जर्नल्स हर पीरियड के बाद, और पॉपुलर मैगजीन्स की भी एक रेंज है, वाइड रेंज है, जो आपको छपते हुए नजर आएंगे। उसमें से जहां आपको पता चलेगा कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड ये जर्नल्स हैं कहां पर हैं, तो आप फटाफट उन्हें ढूंढ के कैन गो थ्रू और अपना रिसर्च जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं आप। फिर हम एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स की बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी आइटम को छोटा करना, कंडेंस करना, उसे समराइज करना, और उसके डिटेल्स जो भी हैं, सारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स जो हैं वो रीड करके उसको साथ में नीचे एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना, ये भी काफ़ी मेहनत का काम होता है। और ये लाइब्रेरीज में ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्टिंग के लिए आपको पूरे जर्नल को थॉरोली देखना पड़ता है, ताकि आप उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे आपने कंडेंस किया बहुत छोटे सेंटेंसेस में बना के उसे 100 वर्ड्स में या 200 में इसे बहुत बड़े आर्टिकल को निकाल के बना देते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाता है ये आर्टिकल मुझसे रिलेटेड है या नहीं है, मुझे इसको पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि सभी लोग ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट्स को ही पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता है डॉक्यूमेंट को, क्योंकि डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए किसी के पास इतना ज्यादा लंबा टाइम होता नहीं, जहां उन्हें लगता है ये वाला एब्स्ट्रैक्ट हाँ मुझसे मतलब का है, मेरी मुझे यूज हो सकता है, तो तब वो जाकर के उसे मेन डॉक्यूमेंट में पढ़ लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली आपको काफी हेल्पफुल रहता है एज अ सेकेंडरी पीरियोडिकल। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है आपका इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये फोर्टनाइटली निकलता है, 15 दिन में निकलता है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स इसमें रिपोर्ट किए जाते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च वर्क जो भी इंडिया में होता है, पब्लिश हुआ होता है इंडिया में जर्नल्स में, वो इसमें आ जाता है। ये निस्केयर करता है, और इसका भी हमने एक एग्जाम्पल दिया, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल है जो आप गूगल भी करेंगे अगर देखेंगे, हाँ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, सीडी फॉर्म में भी होता है, बुक में भी आता, अब ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल जो है ये सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी सारे इसमें मिलते हैं आपको, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में। ये आप प्रिंट फॉर्म में देखें, सीडी फॉर्म में देखें, या ऑनलाइन वेब पे जाकर के देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफीज की। बिब्लियोग्राफीज क्या है? एक सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है दैट शेयर्स ए कॉमन फैक्टर दैट मे बी सब्जेक्ट लैंग्वेज अ पीरियड। अगर हम एक बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं, बिब्लियोग्राफी तैयार करने के लिए हमारे पास बेस क्या होना चाहिए? या तो मैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रही हूँ, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लिया है मैंने, या कोई मैंने लैंग्वेज चूज करी है उस लैंग्वेज से रिलेटेड ले रही हूँ मैं, या एक पीरियड मैंने लिया है इन 5 सालों के बीच में, इन 2 सालों के बीच में मैं इस पे काम कर रही हूँ, या कोई किसी एक ही ऑथर से रिलेटेड बना रही हूँ मैं, इस ऑथर ने क्या क्या काम करे हैं, तो ये सब बिब्लियोग्राफीज में आते हैं। या कोई और भी कोई क्राइटेरिया हो सकता है जिससे रिलेटेड बिब्लियोग्राफीज की जाती है, बनाई जाती है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और सिलेक्टिव बनाई जाती है। इसमें जो अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड जो है लिस्ट किया जाता है, सिस्टमैटिकली बनाया जाता है। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि वही होती हैं जिसमें हम अपने बुक के बारे में, जैसे बुक के बारे में हमें देना है तो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल क्या क्या होगी हमारे पास, नेम होगा ऑथर का या टाइटल किताब का होगा, पब्लिशर होगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी। तो ये 4 चीजें जो है हमारी, जैसे हमने कैटलॉग कार्ड में देते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें कैटलॉग कार्ड की क्या है, टाइटल है किताब का, ऑथर है किताब का, पब्लिशर है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन है। इसी तरह जब हम जर्नल का बना रहे हैं तो जर्नल में हमें क्या है, नाम, ऑथर का नाम, और फिर आर्टिकल का जो टाइटल होगा, फिर जर्नल का जो टाइटल होगा, फिर वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर्स, ये दोनों में अंतर है। बुक में हम क्या लेते हैं और जर्नल में क्या लेते हैं बिब्लियोग्राफी को बनाने के लिए। बिब्लियोग्राफी के लिए एग्जांपल क्या हमने कोट की है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है पब्लिकेशंस को, अगर हमने नेशनल कहा तो इंडिया में जितनी भी पब्लिकेशंस हैं वो कंपाइल करके नेशनल बिब्लियोग्राफी में चली जाती। कौन कंपाइल करता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी वो है जो ज्यादातर पब्लिशर, बुकसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या प्रिंटर जो भी है उससे रिलेटेड होती है। वो अपनी बुक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर लेते हैं जो कि सेल के लिए होती है हमेशा, जहां से हमें ये पता, जिससे हम कैटलॉग भी कहते हैं, जहां पर हमें बुक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जर्नल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ताकि हमें क्या खरीदना है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो है सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश बुक्स है, पब्लिश्ड इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफीज। ये ट्रेड बिब्लियोग्राफीज के बारे में है। इसकी एग्जांपल हमने इंडियन बुक्स इन प्रिंट से की है। अब हम सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज के बारे में, ये भी एक सेकेंडरी सोर्स है जहां पर मैं आपको बता रही थी कि बिब्लियोग्राफीज में हम क्या कह लेते हैं। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी जो तैयार की जाती है, इट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक सब्जेक्ट को, जो हमने केमिस्ट्री में एक टॉपिक ले लिया उसमें कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक हम सूची तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, फिर हम एक लिटरेचर सर्च कर लेते हैं। लिटरेचर सर्च में ये पता चल जाता है इस टॉपिक पे पहले क्या क्या काम हुआ है, वो सारा हम इसमें लिख देते हैं। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट सर्विस जो है ये लाइब्रेरी दे सकती है आपको, अगर आपको रिसर्च करना है और आपने अपने टॉपिक को शेयर करा है लाइब्रेरी के साथ, तो वो आपका ये आधा मदद कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बता देंगे, इससे रिलेटेड आपको लिटरेचर सर्च करके देंगे। तो एक बिब्लियोग्राफी जो है किसी किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स पे भी पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है, ताकि वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लिटरेचर उनको सर्च करना होता है वो आराम से उनको कन्वीनियंटली मिल जाता है। ये ज्यादातर जो है ये यूनिवर्सिटी और स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए होता है, और जो हम स्कूल लाइब्रेरीज हैं या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं वहां पर ये सब काम नहीं होता है। तो हमारे पास यहां पर अब क्या सवाल आते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, डिफरेंशिएट करो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स में क्या फर्क होता है। आपको पता है जहां हम इंडेक्स कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं या क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स में आपके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है जो इंडेक्सिंग के साथ रहता है, जो कि पढ़ने में आराम हो जाता है, आसानी हो जाती है, कन्वीनियंटली आप अपने टॉपिक को ग्रैब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना पड़ता है। फिर बिब्लियोग्राफी क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, जैसे सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ये सारी मैंने आपको बता दी किस तरह की बिब्लियोग्राफीज होती है, बिब्लियोग्राफी में हम क्या ले लेते हैं, किस तरह से बनाते हैं, यही है। फिर हम बताएंगे आपको बुक के बारे में, किताब क्या चीज़ है, किताब सभी ने देखी है और किताब के बारे में सभी जानते हैं, हर किसी के हाथ में किताब होती है, तो ये किताब होती क्या चीज़ है, इसे कैसे, क्यों, कैसे इसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसे इस तरह से कहा जाता है ये एक रिटन या पब्लिश्ड, अगर आपने हाथ से भी लिखा है वो भी चलता था पहले, या अब हम जब पब्लिश करते हैं वो भी चलेगा। किताब की मिनिमम जो क्वांटिटी होती है, जो पन्ने होते हैं, पेजेस जो होते हैं 49 होने चाहिए, 49 से ऊपर होने चाहिए, तो वो किताब का मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। ये अपने थॉट्स को, किसी भी तरह के थॉट, किसी भी टॉपिक को, आइडिया को जब आप प्रॉपरली इलैबोरेट करते हैं, लिखते हैं, तो उसी तरह से ये किताब बन जाती है। तो आप जब 50 पेजेस से आगे चले जाते हैं तो इसको एक बुक का नाम दिया जाता है। इसमें पेजेस होते हैं जिनको ग्लू किया जाता है, पहले तो गोंद से करते थे, अभी वो सारे प्रिंटिंग चेंज हो गई है सब कुछ, इसकी एक स्पाइन होती है जिसका अलग, ये कभी कभी ऐसा होता है हार्ड बाउंड होती है या सॉफ्ट होती है, ये सब डिपेंड करता है। जो हार्ड बाउंड हैं उन पे ऊपर कभी लेदर का कवर होता है, जो इनकी स्पाइन होती है अलग क्लॉथ की हो सकती है या पेपर की होगी, अगर बहुत थिक किताब होगी तो डेफिनेटली कपड़े की ही लगाई जाती है, लेदर की लगाई जाती है, ताकि वो बुक बिखरे ना, अलग अलग ना हो। इसके ऊपर एक थिक कवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है किताब को, तो ये हार्ड बाउंड की, उसकी हमने पिक्चर भी दिखाई है आपको, आपका अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये पिक्चर भी दे सकते हैं साथ में, उस तरह से आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि बुक की शेप कैसी होती है और मिनिमम पेजेस क्या होते हैं, कैसी बनती है, स्पाइन में क्या होती है, स्पाइन किसे कहते हैं हम, लेंथ ब्रेथ मैक्सिमम क्या होती है, 22-24 सेंटीमीटर, ज्यादा भी होती है जो एक नॉमिनल सा है वो 22-24-26 सेंटीमीटर तक ही होता है। तो वो पैम्पलेट है, फिर इसके बाद पैम्पलेट का वो है, ये अनबाउंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, पब्लिकेशन है, जो एक कवर पेज होता है इसके ऊपर और 5 पेजेस से 48 पेजेस के बीच में होता है, मिनिमम 5 पेजेस होंगे आपके पास, मैक्सिमम 48 पेजेस से ऊपर नहीं जा सकते, एक्सक्लूसिव द कवर पेजेस, दोनों जो आगे पीछे के जो कवर पेजेस लगते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं, कंटेंट को अलग कर देते हैं, टोटल 5 और 48 के बीच में होते हैं। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट पहले कहा जाता था जब हम खुद के आइडियाज को हम कलम से लिखते थे या किसी और स्याही से लिखते थे, कागज पे, भोज पत्रों पे या पत्तों पे लिखा जाता था, वो एज इट इज यूज किया जाता था, वो हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे उसे। और आज के जमाने का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये वो वाला डॉक्यूमेंट है, अगर आपने हाथ से लिखा है, टाइप किया, कंप्यूटर से प्रिंट किया या कहीं पर किसी तरह से भी आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि ऑथर का ओरिजिनल वर्क है, जो आपने सोचा है, समझा है, वो उसको आपने कागज पे उतारा है, वो किस तरह से बाय हैंड लिखा, टाइप किया, प्रिंट किया, जो भी जैसे भी किया, उसी को हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। बुक की कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स की बुक्स होती हैं, किताब तो सिंपल भी होती है और कंपोजिट भी होती है। सिंपल तो वो है जो एक सब्जेक्ट पे कंटिन्यूसली लिखी जाती है, एक या एक ऑथर ने लिखी है। मोर देन एक ऑथर हो तो सिंपल बुक है, और अगर चैप्टर्स अलग ऑथर्स ने अलग अलग लिखे, कभी कभी क्या होता है पांच छह ऑथर मिलके भी एक किताब को अलग अलग चैप्टर अलग अलग लिखे, तो उसे हम कंपोजिट बुक कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स देखी हुई हैं कि अलग अलग आर्टिकल्स को कंपाइल करके एक एडिट कर लेते हैं, कोई भी एडिट कर देते हैं तो उसे कंपोजिट बुक कहते हैं। सिंपल होता है एक ही ऑथर से पूरी किताब लिखी गई हो। फिर सिंगल वॉल्यूम और मल्टी वॉल्यूम बुक में क्या डिफरेंस है? सिंगल वॉल्यूम तो तभी किताब छपती है अगर आपका जो कंटेंट है वो खत्म नहीं हुआ, अगर आपने कुछ ऐसी चीज निकाली अल्फाबेटिकली ए टू एम तक एक जगह पे आगे, एम से लेके आगे पहुंच गए आप। या आपने देखा होगा यूजुअली जो हमारे पास एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं बहुत होते हैं, 36 वॉल्यूम के, 40 वॉल्यूम के, 38 वॉल्यूम के, या कोई बायोग्राफी हमने लिखी है 10 वॉल्यूम की, 11 वॉल्यूम की होती, तो उसे हम मल्टी वॉल्यूम कहते हैं। रेफरेंस बुक्स कौन सी कही जाती है? रेफरेंस बुक्स वो सारी हैं जैसे डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, ईयर बुक, एल्मनैक्स, डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफीज, ज्योग्राफिकल सोर्सेज, ये सारे हमारे रेफरेंस सोर्सेज हैं। और बाकी जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उनमें भी रेफरेंस बुक्स होते हैं, मगर ये ज्यादातर जो रेफरेंस बुक्स है सिंगल यूज के लिए होते हैं, किसी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसे निकालते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन किसने मांगी है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से हमें मिलती है। फिर है फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक। फिक्शन क्या हुआ? जैसे कि हम कहानियां इमेजिन कर लेते हैं, या कभी कभी हमने कुछ देखा हुआ होता, पढ़ा हुआ होता, उसे हम इमेजिनरी एक स्टोरी बना लेते हैं, वो एक फिक्शन हो जाता है। उसमें अगर हमने नॉन फिक्शन देखा जाए तो नॉन फिक्शन वो है जो कि प्रॉपर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रेफरेंस बुक है, या कोई भी नॉन फिक्शन बुक है जिसमें इवेंट्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, लोगों के बारे में, रियल थिंग्स के बारे में बात हुई है, वो नॉन फिक्शन बुक होती है। और फिक्शन में आप कोई भी स्टोरी बना लीजिए, वो आपकी जैसे भी आपने चाहा स्टोरी बना ली, वो एक फिक्शन बुक हो गई। मगर यहाँ पर जो हम सारे फिक्शन बुक्स में क्या होता है, क्लास नंबर एक ही लगता है, पर आप ढूंढेंगे कैसे उस क्लास नंबर को? वहां हम इनको बुक नंबर के हिसाब से, ऑथर के नाम से हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। जैसे डीडीसी में 823 सभी नॉवेल्स को नंबर मिलता है, मगर हम उसे अरेंज कैसे करते हैं? जैसे किसका, किसी ऑथर का नाम ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, इस तरह से ये बुक्स अरेंज होती हैं आपकी लाइब्रेरी में, और आपको ढूंढने में आसानी होती है। फिर दूसरा पार्ट है इसका, टेक्स्ट बुक और ट्रीटेज क्या होती है। टेक्स्ट बुक तो एक रेगुलर स्टडी के लिए, जैसे एनसीईआरटी किताबें निकालता है, छापता है, या एनआईएस जो किताबें छापता है, ये सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिसमें आपको रेगुलर पढ़ाई के लिए, जो आपका सिलेबस बना हुआ उससे रिलेटेड चीजें मिल देती हैं, और आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आप केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ही मिलेगा आपको, और वो डिज़ाइन भी की जाती है ताकि आपको जनरली आपसे रिलेटेड आपको पढ़ना हो, उससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती है। अगर आप रेफर करना चाहेंगे तो उसके अलावा फिर आप अलग से बुक्स को रेफर कर सकते। मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके ग्रेड के हिसाब से आपको बताया जाता है, आपकी क्लास के हिसाब से टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, वो नॉलेज जो आपको क्लास में यूज होती है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहेंगे तो वहां से लेकर के आप उसे फिर रेफर कर सकते हैं। फिर ट्रीटाइज, ट्रीटाइज क्या होता है? एक फॉर्मल इन डेप्थ ट्रीटमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से टेक्स्ट बुक तो हम कहेंगे इन डेप्थ नहीं जाता है, स्टूडेंट्स उसे अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, जैसे पास होने के लिए कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं, एकदम एडवांस में जाना चाहते हैं, स्कॉलरली रीडिंग का हैबिट है, या आप स्कॉलरली हैं, तो उसके लिए आपको ट्रीटाइज की जरूरत पड़ती है। इसकी जैसे हमने कैपिटलिज्म में एक ट्रीटाइज ऑफ इकोनॉमिक्स की एक एग्जाम्पल दी है, इसकी एक पिक भी दिखाई है। फिर हम देख रहे हैं अब जो बुक हमारे पास 50 पेजेस की होती है, इस बुक के अंदर क्या क्या होता है? इन बुक के अंदर पहले जो कुछ पेजेस हैं, टाइटल पेज है, कॉपीराइट पेज है, एक्नॉलेजमेंट पेज है, एक डेडिकेटेड पेज होता है। आप अपने बुक्स को देखेंगे, ये चार पांच पेजेस जिनको हम प्रिलिमिनरी पेजेस लाइब्रेरी में कहते हैं, प्रीफेस होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ये सारे ही आपके पहले के सारे पेजेस होते। फिर उसके बाद आपका मेन आएगा टाइटल पेज में क्या लिखेंगे आप, फिर कॉपीराइट पेज में क्या लिखना है आपको, किसने आपकी किताब को छापा है, पब्लिशर कौन है, एक्नॉलेजमेंट आप किस किस को देना चाहते हैं, फिर आपको किताब किसको आपने डेडिकेट किया है, प्रीफेस में आपका फॉरवर्ड या इंट्रोडक्शन किसने लिखा, अगर कोई आपसे सीनियर या कोई आपका बहुत अच्छे से समझता है आपकी बुक को जो आपने लिखी है, वो आपके लिए फॉरवर्ड लिख देता है। टेबल ऑफ कंटेंट में वो आप चीज़ें डालते हैं जो आपने किताब के अंदर लिखी, जिस तरह से आपने किताब को अरेंज किया है। फिर टेक्स्ट हो गया, फिर वो टोटल जितने चैप्टर्स हैं आपके, वो ग्लॉसरी में हम आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में भी बताते हैं। बिब्लियोग्राफी में हम वो लिखते हैं जो हमने किताबें, आर्टिकल्स, जिन लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, जब हम उनको साइट करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, तो वो हम वहाँ पर एक बिब्लियोग्राफी बनाते हैं लास्ट में कि हमने इन आर्टिकल्स को, इन बुक्स को, इन ऑथर्स को हमने यूज़ किया है। इंडेक्स वो होता है जहाँ पर अगर लिस्ट ऑफ नेम्स, पर्सन, प्लेसेस कोई भी अल्फाबेटिकली अरेंज की जाती है, ताकि वो आपको अगर कहीं कुछ ढूंढना हो तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। फिर हम टर्शरी सोर्सेज जो है, लास्ट के सोर्सेज हैं हमारे टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज कहाँ से आते हैं? ये ज़्यादातर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से निकल के आते हैं। इन सोर्सेज को बनाने के लिए हम क्या बताते हैं, टर्शरी सोर्सेज हमें हेल्प करते हैं प्राइमरी सोर्सेज में से कहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेना और सेकेंडरी सोर्सेज को। इसमें बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, गाइड टू लिटरेचर, डायरेक्टरीज लिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टरी के शेप में मिलती है, गाइड के शेप में मिलती है, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल आपको दिए है क्यूमुलेटिव बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज जो विल्सन कंपनी छापती है। इस तरह के सोर्सेज को हम टर्शरी सोर्सेज करते हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें। तो यहाँ पर हमें बहुत कम सोर्सेज होते हैं जो यूज करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिकेशंस वो हैं, जैसे कि मैंने आपको दीप के बारे में एग्जांपल दिया आपको अभी, कि वहां पर हमने ई बुक्स, ई जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, वो सारे हमारे दीप पे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के बारे में आप जानेंगे। यूजुअली लाइब्रेरीज अब बुक्स के अलावा ई बुक्स भी खरीदती हैं, जो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इन बुक्स को ऐड करते हैं, ताकि आपके जो सभी लोग हैं उस बुक को विजिट करें और देखें और आप तक पहुंचे। ये किताबें देखने के लिए आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो ये होता है कि बुक के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता है, और यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है 24/7 आपको मिलेंगे, एंड मोर सो दे आर नॉट टेकिंग एनी स्पेस इन द लाइब्रेरी। हमें जो एनुअल स्टॉक टेकिंग करने की जरूरत नहीं उनमें पड़ती है, बिकॉज द बुक्स आर ऑलवेज देयर, दे आर अवेलेबल फॉर एवरी वन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का ये फायदा सबके लिए है, बस आपके पास एक कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट का एक कनेक्शन होना जरूरी है, या आपके पास कोई भी डिवाइस हो जो जिससे आप लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एनी टाइम एट योर कन्वीनियंस, जब मन करेगा तब पढ़ लिया, अभी लाइब्रेरी में नहीं जाना है तब भी आप इसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के बारे में है। अभी तक हमने आप जो पढ़ा है, प्राइमरी सोर्सेज के बारे में आपको बताया, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताया, ई जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इन सब के बारे में हमने बात की। इस तरह से जो हमारा आपका चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, खत्म होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।